नमस्कार मित्रों, मोबाइल एंड सबका दोस्त योगेश। आज का हमारा विषय है, पक्ष विपक्ष में आप कैसे वोट करते हैं, कोई अपना उम्मीदवार कैसे चुनता है। यह कोई रहस्यमय प्रक्रिया है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। भारत का मतदाता अक्सर चुनाव विश्लेषकों और एग्जिट पोल वालों को चकित करता आया है। क्या चुनाव में प्रेम जैसी कुछ अबूझ है जिसके कई बार प्रेम प्रेमिका की तरह उम्मीदवार को भी पता नहीं होता कि उसे क्या चुन लिया गया। आज हमारे साथ एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े हुए हैं, जो कि आप कैसे वोट करते हैं इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा करेंगे। सर, मोबाइल वाणी पर स्वागत सर आपका।
जी जी सर, नमस्कार जी।
सर, ये जो टॉपिक है, सर आप कैसे वोट करते हैं, क्या सोचते हैं सर मतदाता?
देखिए, मतदाता की सोच जो है बहुत गहरी होती है, और वर्तमान कालावधि का जो मतदाता है वो पहले की तुलना में काफी जागृत हो चुका है, और खास करके अभी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है उसमें। जो शिक्षित वर्ग है उस तक हर व्यक्ति के पास, मतलब भारत में कहते हैं कि 10 में से 9 लोगों के पास मोबाइल है, और मोबाइल केवल एक व्यक्ति के पास नहीं, मतलब एक व्यक्ति के परिवार के हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। तो ये एक प्रकार का संक्रमण है, जो विचारों का, संदेशों का संक्रमण सोशल मीडिया से होता है। इससे जो मतदाता है वो जागरूक हो गया, और रही बात वो कैसे मतदान करता है, तो इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान, मुझे एक टॉपिक था सोशियोलॉजी में, उसको मतदान व्यवहार कहते हैं। मतदान व्यवहार में जो मतदाता हो वो अंतिम समय में भी अपना निर्णय बदल सकता है, उसको उसकी आसपास की जो परिस्थितियां है वो सारी चीजों को ये मतलब प्रभावित करती है, और वो अंतिम समय में जो उसके मन में विचार बनता है, आप उसके वोट को देख के विचार नहीं बनाएगा वो, या किसी ने पैर छू लिए उससे विचार नहीं बनाएगा वो, कुछ नहीं, ये सारी चीज नहीं, वो अंतिम, मतलब ये सारी चीजें उसके साथ चलती, लेकिन अंतिम क्षणों में जो निर्णय लेता है वो निर्णायक होता है, और वो किसी भी पार्टी के पक्ष में हो सकता है। जी सर,
जी सर। सर, एक मतदाता राजनीतिक पार्टियों के जो मैनिफेस्टो होते हैं, क्या उसको प्रभावित होकर मतदान करता है? कितना आप देखते हैं कि हर मतदाता को हर पार्टियों के मैनिफेस्टो की जानकारी होती है?
नहीं, एक आपको बहुत बड़ा सच मैं बता दूं
जी
कि जो मैनिफेस्टो होता है
जी
उसको अधिकतर मतदाता नहीं पढ़ता है,
जी
और राजनीतिक संगठन हालांकि वो ऐसा प्रसारित कर देते हैं मैनिफेस्टो,
जी
लेकिन आपने देखा होगा कुछ बिंदुओं को ज्यादा हाईलाइट करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी कहे सत्ता पक्ष विपक्ष, जैसे 1,000 रुपये देने वाली बात कर रहे, कोई कह रहा है 1,500 देंगे, कोई कह रहा है सिलेंडर देंगे, तो जबकि राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय होते हैं, और राज्य सूची संघ सूची के 100 विषय होते हैं, राज्य सूची के 61 विषय होते हैं, और समवर्ती सूची के 52 विषय होते हैं। इन विषयों पर राज्य को काम करना होता है, संघ को अपना अलग, राज्य को अपना। तो राज्य सूची के जो 61 विषय है, 61, मुझे नहीं लगता कि उन सारे बिंदु को यहाँ रखा जाता है। यहाँ पे वो तत्काल वाले बिंदु को रखा जाता है, जिससे मतदाता की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, और आवश्यकता को ध्यान में रखते उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कोई भी पार्टी, हालांकि मैनिफेस्टो जारी करती, लेकिन बहुत कम लोग उसको पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ जो साक्षरता की जो दर है, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपने काम से ही फुर्सत नहीं, वो तो वोट करने भी नहीं जाते, कई बार तो बोलते मेरे एक वोट देने से क्या होगा। लेकिन इस मंच के माध्यम से 17 नवंबर के लिए सबसे विनम्र निवेदन भी करना चाहूंगा कि वो जरूर जाए, आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जानकारी होगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो है वो एक वोट से गिरी थी, तो इतना बड़ा फर्क पड़ता है एक वोट का। इसलिए मतदान करिए, और आपको जो भी जितनी भी जानकारी उनके प्रचार प्रसार माध्यमों से पता होती है, या जो मीडिया के माध्यम से टीवी पे जो आती है, या जो भी माध्यम बन सकता है, गवर्नमेंट खुद प्रचार प्रसार कर रही है मतदान करने के लिए, तो ये तो ठीक है, लेकिन पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए।
जी
जी
सर, एक मतदाता मतदान करने वाले दिन एक मतदाता क्या सोचता है, और क्या मतदाता कितना जानता है जिनको मतदान करता है उनको? सर
देखिए, अभी मैंने कहा ना, मतदाता की जो भूमिका है वो बहुत बदल गई है। अब वो मतदाता नहीं रहा जो आज से आजादी के बाद का मतदाता था, 1952 में जो पहली बार चुनाव हुए थे उसके बाद के मतदाता में और अभी 2023 के मतदाता में बहुत फर्क पड़ा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है ना शिक्षा की आई है, शिक्षा से बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब लोग उन पहलुओं को देखते हैं जिससे उनका भविष्य तय होता है, जिससे उनकी भविष्य की दशा और दिशा तय होती है, इन सारे पहलुओं को लिखा जाता। अभी मतलब रोटी कपड़ा और मकान तक हमारी व्यवस्था टिकी नहीं है। अब हम जो आधारभूत संरचना है, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार और एक बेहतरीन लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी बात कह सके, लोगों की बात को सुना जा सके, और अब लोग संविधान पढ़ने लगे साहब, जब से संविधान पढ़ने लग गए लोगों में जागरूकता आई है कि हम अपने दलों से सवाल कर सकते हैं, सवालों का जवाब मांग सकते हैं, तो ये जो जागृति ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तनशील समय में मतदाता का परिवर्तित होना बहुत लाजमी है और वो परिवर्तित मानसिकता अब विकास मूलक हो गई है। इसलिए आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में अब धर्म को शामिल किया गया। मैंने आपको शायद पिछले इंटरव्यू में बताया था कि धर्म जो है ना अफीम है, मतलब इसमें हर कोई एक विश्वास लेके चलता है, मतलब अंधानुकरण करता है। धर्म के खिलाफ तार्किकता की बात होती नहीं तो अंधानुकरण होता है। मैं जबकि बोलता हूँ कि धर्म जो हमारे सांस्कृतिक जीवन शैली का एक आधार बिंदु है, वो क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो में गए थे तो हिंदुत्व को उन्होंने एक लाइफ स्टाइल कहा था, जीवन जीने का एक तरीका बताया था। उसमें कोई कर्म कांड और बाह्य आडंबर नहीं, क्योंकि कर्म कांड जो है ना वो आपको धैर्यशील बनाते, वो आपकी साधना की प्रक्रिया के साधन होते, ना कि वो धर्म होते। इसलिए आजकल इन लोगों ने धर्म को एक ऐसा आधार बना दिया है, जबकि होना चाहिए कि जब भी आप किसी मंच पे बात करते हो तो आपका मॉडल क्या है, आप शिक्षा को लेकर क्या करने वाले हो, आप रोजगार को लेकर क्या करने वाले हो, आप विकास को लेकर क्या मॉडल है, इस तरह की तो कोई बात ही नहीं, बस इसकी उसकी माइनस प्लस करते रहते, इसने ऐसा किया। और करना भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र का जो स्वरूप है बाहुबल और धनबल में परिवर्तित होते जा रहा है, तो उसके लिए जरूरी भी है लोगों तक वो बात पहुंचाना। लेकिन विकास हम लोग कैसे करेंगे, अभी देखिए मेरे घर में उस दिन कुछ कार्यकर्ता लोग आए और सिस्टर को कहने लगे कि हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि ये तो बोल के जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो ताना बाना है कि वो यदि 450 में सिलेंडर दे रहा है तो कहीं ना कहीं एक अर्थव्यवस्था का दूसरा अंग भी तो प्रभावित होगा। इसीलिए महंगाई बढ़ती है क्योंकि अभी अभी देखिए जो पिछले साल 15 माह सरकार रही कमलनाथ जी की, फिर बाद में 18 साल ये रही, तो अर्थव्यवस्था का जो बोझा है आज देखिए भारत मतलब मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति के ऊपर 44,000 का कर्जा है। अब आप बताइए ये 44,000 का कर्जा मुक्त होने के लिए सरकार को कितने प्रयास करने पड़ेंगे
जी।
और हमारी अर्थव्यवस्था जो है, हमारी भले ही भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान 5वां है विश्व में, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए, अतिथियों को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है जो संविदा शिक्षक थे उनके मतलब जो नियुक्ति का था, परीक्षा ले चुके, अभी तक नियुक्ति नहीं दी, परीक्षा ही होती नहीं। 2017 के बाद तो वैकेंसी आई नहीं थी, अभी इतनी भरमार कर दी कि बच्चे को नहीं पता कौन सी एग्जाम दे रहा है। तो ये इस तरह का आलम रहेगा तो सर प्रभावित तो होगा मतदाता
जी। सर सर एक मतदाता के रूप में स्थानीय मुद्दे, राज्य मुद्दे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे कितना सोचता है मतदान करने से पूर्व कि किस राजनीतिक पार्टियों ने किस रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो लोग व्यक्ति सोचते हैं और फिर मतदान करते हैं, तो इसको लेकर एक
नहीं ये आपका प्रश्न बिल्कुल बहुत ही लाजमी और बहुत प्रासंगिक है। मैं तो कहता हूँ आज के संदर्भ में देखिए, जब देश की बात आती है तो वहाँ एक सक्षम योग्य नेतृत्व को देखा जाता है, राज्य की बात आती है तो जो राज्य के अपने, मैंने कहा ना उसके अपने खुद के 61 टॉपिक है, सब्जेक्ट है जिसपे राज्य काम करता है, उन विषयों को मतलब जागरूक मतदाता देखता है। और स्थानीय स्तर के जैसे नगर पंचायत की बात कर, नगर पालिकाओं की बात करें तो उसमें 18 विषय है, स्थानीय निकाय जिसमें पंचायत आती है उसमें उनके 29 विषय है। तो इन विषयों को, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का जो डेवलपमेंट जो हायर की है उसका पद सोपान व्यवस्था है, सेंटर स्टेट और लोकल, तो सबका अपना एक इशू होता है, सबके अपने विषय होते हैं और उन विषयों को ध्यान में रखते हुए ही मतदाता अपनी स्थानीय क्षमता मतलब स्थानीय जो नीतियाँ है, स्थानीय जो नियम है उसको अमलीजामा पहता है। अब देखिए जैसे कृषि का जो राजस्व का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का है, तो सीधी सी बात है मुद्दे तो यहीं के उठेंगे ना
जी।
जी
सर, एक मतदाता के रूप में या जिन राजनीतिक पार्टियों के जो विचारधारा होती है, एक मतदान करने से पूर्व एक मतदाता किस तरीके से देखता है इन विचारधाराओं को और फिर मतदान करता है?
देखिए, अभी सोशल मीडिया जो है एक बिल्कुल ऐसा एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है कि जो लोगों के जनमानस को परिवर्तित करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। आपके सामने जो चीजें परोसी जाती है, आपके सामने जो चीजें रखी जाती है, वही आपके अवचेतन का आधार बिंदु बनता है, वैसे आपका तय होती है। जैसे आपने देखा होगा मार्केटिंग होती है, कोई वस्तु की मतलब प्रेजेंटेशन होता है, कोई वस्तु बेचने के लिए आता है कि जैसे लक्स साबुन का एड है या और कोई एड है, तो आपने देखा होगा जब आपको बार बार परोसी जाती वो चीज, तो आप जब दुकान में जाते तो आपको कोई नाम याद नहीं आता है। हमाम लक्स से ज्यादा अच्छी है, लेकिन लक्स का हीरोइन के साथ पोज देके उसको बिकने के लिए बेचा जाता है, तो आप देखना लक्स साबुन देना भाई। तो वही राजनीति का बहुत बड़ा एजेंडा है कि वो ऐसी चीजें परोसते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट है, जो आपकी आवश्यकता है, जबकि उनके अन्य बिंदु को नहीं रखते, आपके रिक्वायरमेंट को रखते। हमारे यहाँ चुनाव कैसे होता है? प्याज के आधार पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार क्यों गिरी थी? प्याज। तो ये हमारे विषय होते हैं। अमेरिका, जर्मनी, यहाँ के लोगों को देखो, जहाँ 100% साक्षरता वहाँ विदेश नीति और परमाणु ऊर्जा और बम के ऊपर बात होती है। हमारे यहाँ नमक रोटी, और देखिए अभी गवर्नमेंट कह रही है कि हम 5 साल और फिर खाना खिलाएंगे। अरे आप खाना खिला रहे हैं, उनसे काम नहीं करवा के उनको और आलसी बना रहे हैं। अभी देखिए इसका सीधा प्रभाव खेती पे पड़ रहा है, लोगों को मजदूर नहीं मिलते, क्योंकि भाई आप सब सारी चीजें फ्री दे रहे हो। अभी मैंने नितिन गडकरी जी का एक भाषण सुना था कि लोगों को फ्री देना बंद करो आप। आप फ्री देना बंद करोगे तो व्यवस्था अपने आप सुधर जाए। अब देखिए गवर्नमेंट कह रही है कि हम इतना यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपको शिक्षा के लिए 500 रुपया देंगे, इसमें वो देंगे, तो इससे क्या होगा? हम काम काई के लिए करेंगे? अब हमको मालूम है कि गेहूं इतना किलो मिलना है, हमको चावल इतना किलो मिलना है, और क्या कहते हैं वो 1,000 या 1,500 रुपया हमको महीना मिलना है, सारा हमको मिलना ही है, काम क्यों करें भाई? जापान को देखिए, 1945 में जब बम गिरा था उसके बाद वो आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया, और हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे, फिर भी उसके बावजूद भी करोड़ों लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे। हम उसको स्वरोजगार स्वयं उद्यम के माध्यम से ऊपर उठाने की बात क्यों नहीं कर रहे? उसको निराश्रित क्यों बना रहे? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत निराश्रित रखा जा रहा, ताकि हर बार आप उनके लिए मुद्दा बने और उनकी सरकार का संचालन हो, निर्माण हो। जी
जी, तो ये थे आज हमारे साथ एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर आप कैसे वोट करेंगे, एक मतदाता क्या सोचता है, किस रूप में सोचता है और किस रूप में किस विचारधाराओं के साथ या वर्ग विशेष को देखकर मतदान करता है और उनके मन में क्या विचार आते हैं, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। सर, मोबाइल वाणी को समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, मोबाइल वाणी सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।